कहीं ये आपकी ज़िंदगी के पन्ने तो नहीं? अनुराग वत्स। आपकी नज़र से कई किताबें गुजरती होंगी, इनमें से बहुत कम ऐसी होती हैं जिनके पहले से आखिरी पन्ने तक आप साथ रहते हैं। आगे ऐसी ही 5 बेस्ट सेलर किताबों के बारे में बात की गई है। इनसे आप ज़िंदगी जीने के तौर तरीके भी सीख सकते हैं। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। अच्छा हो अगर एक किताब आपके सामने ऐसे खुले जैसे आपका अजीज दोस्त आपका मन खोलता है। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक ऐसी ही किताब है, उन मसलों पर बात करती हुई जिनसे आप परेशान रहते हैं, उन सवालों पर जिनके जवाब आपको ठीक ठीक नहीं मिलते। मन की गिरहें खोलती मार्क मेंसन की यह किताब उन सेल्फ हेल्प किताबों से अलग है जिनसे लेखक आपकी तरफ हर पन्ने में ज्ञान ठेलते हैं। मार्क मुश्किल हालात, मन की उलझनों, निजी दिक्कतों के बारीक ब्यौरों में जाते हैं, लेकिन वह आपको किसी की नज़रों में महान, शानदार और ऊंचे बने रहने के नुस्खे थमाने से बचते हैं। अपनी कमियां, अपने दायरे और अपनी कुव्वत पहचानने का आग्रह करते हैं। यह किताब आपके भीतर उस गुंजाइश को बढ़ाती है जिसके बूते एक बुरे दिन से निकलकर आप दूसरे दिन में बेहतर करते हैं। ऐसा करते हुए मार्क दुनिया की बहुत परवाह ना करने की सलाह देते हैं। वह सबसे ज़्यादा आपको अपनी परवाह करने के लिए कहते हैं। उनके शब्दों में, आपको अपने निजी डर, अपनी भयावह गलतियों और अपनी डावाडोल हालत के बारे में पता करना चाहिए। उनका सामना करने की आप में हिम्मत होनी चाहिए। इन कमज़ोरियों को कहीं से भी दबाने, इन्हें बताने वालों को चुप कराने की नीयत घातक हो सकती है। उनका मानना है कि हमारी खामियां ही हमारी बेहतरी की सबसे बड़ी स्रोत हैं। इन्हें अच्छी तरह जानना ज़रूरी है, तभी हम साहस और आत्मविश्वास को पा सकेंगे जिसकी तलाश हमें भटकाती रहती है। हमें अक्सर खुश और सकारात्मक रहने की सीख दी जाती है। मार्क इस थ्योरी को खारिज करते हैं। उनका मानना है कि दिली खुशी ओढ़ी हुई सकारात्मकता से नहीं, मुसीबत का डटकर सामना करने और उससे उबरने से मिलती है। द आउटलायर्स द स्टोरी ऑफ सक्सेस। कोई शख्स कामयाब है, इसकी कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन यूं ही कोई बिल गेट्स नहीं बन जाता। मेलकम ग्लैडवेल ने कामयाबी की ऐसी खास कहानियों को इस किताब में जगह दी है। किताब का नाम उन्होंने द आउटलायर्स रखा है, यानी आला दर्जे की कामयाबी हासिल करने वाले वे किरदार जो हमारी सामान्य सोच में ठीक से नहीं समाते। ग्लैडवेल का मानना है कि चाहे दुनिया की बेहद अमीर शख्सियतों में शुमार बिल गेट्स हों या संगीत की दुनिया का सबसे कामयाब बैंड द बीटल्स, इनके बारे में केवल यह जान लेना काफ़ी नहीं कि वे कैसे थे या उन्होंने क्या किया। यह जानकारी उतनी ही मानीखेज है कि ये किन हालात की उपज थे और उन्हें किन संयोगों ने गढ़ा। ग्लैडवेल कहते हैं, बिल गेट्स को अगर 13 साल की कमसिन उम्र में जी भरकर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का मौका नहीं मिलता तो वह केवल बढ़िया दिखने वाले एक मामूली कारोबारी बनकर रह जाते। बीटल्स के बारे में उनकी राय है कि सबकी आंखों का तारा, कानों का सुकून और होठों की सरगम बनने से पहले 1960 से 1964 तक यह बैंड लगातार परफॉर्मेंस के जरिए खुद को साबित करता रहा। एक आकलन के मुताबिक इस बैंड ने इन वर्षों में 10,000 घंटे तक तो लहरियां बिखेरी। ग्लैडवेल इन घंटों को कामयाबी का बेंचमार्क मानते हैं। पूरी किताब में कई बार वह हमें अपने फन पर 10,000 घंटे मेहनत करने की सलाह देते हैं। उनका साफ मानना है कि बड़ी कामयाबी इससे कम मेहनत में नहीं मिलने वाली। द टिपिंग पॉइंट और ब्लिंक जैसी किताबों के जरिए धूम मचाने वाले मेलकम ग्लैडवेल अपने तमाम उदाहरणों, संदर्भों और व्याख्याओं से आउटलायर्स में भी चकित करते हैं। वह कामयाबी के किसी आसान और सरल रास्ते की तरफ नहीं, बड़े मुकाम तक पहुंचने की पेचीदगियों और चुनौतियों पर भरपूर रोशनी डालते हैं। वह इशारा करते चलते हैं कि हमारी निगाह में नायाब लोगों ने इन मुश्किलों के बीच से ही कामयाबी का खाका खींचा। 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। इंसान के अतीत को द सेपियंस और उसके आने वाले कल की तस्वीर होमो डेउस जैसी किताबों में पेश कर मशहूर हुए इजरायली इतिहासकार युवाल नोआ हरारी सोच विचार की दुनिया में एक सनसनी की तरह दर्ज किए गए हैं। अपनी नई किताब 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी में उनका ध्यान हमारे आज और अभी पर है। इसके जरिए उन्होंने सबसे जायज और ज़रूरी समस्याओं को उठाया है। उन्हें उनके सही नामों से पुकारा है। इस बेसिक काम के बाद हरारी समझ के उस रोशन गली में दाखिल हुए हैं जहां सवालों के जवाब और उनमें कुछ नया जोड़ने की संभावनाएं बनी रहती हैं। हरारी कहते हैं, मेरा मकसद यहाँ इतिहास लिखना नहीं है। उनके शब्दों में, मेरा एजेंडा ग्लोबल है। सच्चाई कई धागों की महीन बुनावट होती है। दुनिया आज जिन समस्याओं का घर है, इस किताब में उनके बारे में चर्चा की गई है। तकनीक की तरफ से उछाली गई चुनौतियां हो या रोज नए दर्ज होने वाले राजनीतिक फैसले, इंसानी खून बहाने पर आमादा आतंकवाद हो या फेक न्यूज के जमाने में न्याय की टूटती आस, वे इन सबको अपने हिसाब में लेते हैं। वर्तमान की बात करते हैं, हमें भविष्य के लिए तैयार करते हैं। कुल 21 चैप्टर में बटी इस किताब को हरारी मूलतः उन सवालों का रिस्पॉन्स मानते हैं जो समय समय पर बतौर पब्लिक इंटेलेक्चुअल उनसे पूछे गए थे। वह कहते हैं, इन चैप्टर्स को लिखने के पीछे की असल प्रेरणा लोगों के मन में उठते आज के सवाल ही हैं। किताब के टाइटल का भ्रम भी वह खुद इन शब्दों में दूर कर देते हैं। ये लेसन सवालों के सरल जवाबों पर खत्म नहीं होते। इनका मकसद पढ़ने वालों को आगे सोचने के लिए उकसाना है, उन्हें इस बातचीत में शामिल करना है जो हमारे समय की सबसे जिंदा बहसें हैं। द अल्टीमेट हैप्पीनेस प्रिस्क्रिप्शन। दीपक चोपड़ा की दुनिया भर में धूम इस बात के लिए है कि एक डॉक्टर होने के बावजूद वह दवाखाना बनते जा रहे इंसानी शरीर के लिए दवाओं से अलग कुछ नया और बेहतर सुझाते रहे हैं। वह तन और मन दोनों की सेहत को बराबर तवज्जो देते हैं। द अल्टीमेट हैप्पीनेस प्रिस्क्रिप्शन में चोपड़ा ऐसे 7 मसलों पर फोकस करते हैं जिनसे आप तनाव से भरी दुनियादारी के बीच खुशदिली से जीने के बारे में सोच सकते हैं। चोपड़ा सबसे पहले अपने शरीर के बारे में जागरूक रहने की सलाह देते हैं। वह कहते हैं, शरीर आपकी खुशियों का पहला और सबसे भरोसेमंद गाइड है। अगर यह किसी शारीरिक या भावनात्मक परेशानी का संकेत दे तो इसे नजरअंदाज ना करें। इसके बाद वह मन की उन परतों में तह बतह उतरते हैं जिनसे हमारा वजूद प्रभावित होता है। दूसरों की नजर में अपनी इमेज कैसी है के फरेब में पड़ने की बजाय वह अपने सच्चे आत्मसम्मान की खोज के लिए आपको उकसाते हैं। तीसरी जरूरी बात है उन भावनाओं, आदतों और रिलेशनशिप से खुद को उबारने की जो आपके मिजाज पर एक टॉक्सिक असर छोड़ती हैं। चौथी चीज है अपने विचारों का हमेशा बचाव करते रहने की आदत से बाज आना। पांचवी है अपने आज पर नजरें गड़ाए रखना। यही नजर हमें उनकी छठी सलाह के करीब ले जाती है जहां वह भीतर और बाहर की दुनिया से तालमेल बिठाने की वकालत करते हैं। आखिरी चैप्टर में चोपड़ा नई जानकारियों के लिए खुला दिमाग रखने की पैरवी करते हैं जिसकी दरकार एक लगातार जटिल होती दुनिया में अब पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। खुशियां पाने और उन्हें कायम रखने के लिए दीपक चोपड़ा के तमाम प्रिस्क्रिप्शंस महज डॉक्टरी चिट्ठे बनकर रह जाते अगर उन्होंने इनमें जिंदगी के अनुभवों को जगह ना दी होती। हर चैप्टर में चोपड़ा अपनी मान्यताओं को कई व्यावहारिक अनुभवों से विस्तार देते हैं। इसी विस्तार में आपके लिए सीखने और अमल करने की कई गुंजाइश हैं। द पावर ऑफ हैबिट। हम जो भी हैं इनमें बहुत बड़ा रोल हमारी आदतों का है। ये आदतें हमारे भीतर कैसे पनपती हैं? क्यों हम किसी आदत के गुलाम बन जाते हैं? क्यों किसी एक से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्यों सब कुछ होते हुए भी एक बुरी लत तमाम किए धरे पर पानी फेर देती है? कैसे लत बदलकर बेहतरी की तरफ जाना मुमकिन होता है? चार्ल्स ड्यूहिक की किताब द पावर ऑफ हैबिट इन सवालों का जवाब है। चार्ल्स ये जवाब रिसर्च और केस स्टडीज, वैज्ञानिक तथ्यों और निजी मुलाकातों के मेल से तैयार करते हैं। इसी वजह से ये किताब आदतों के बारे में एक उबाऊ स्टडी होने से बच गई है। चार्ल्स लिखते हैं, आदतों के बारे में खास बात यह है कि हमारे भीतर घर करने के लिए ये किसी की इजाजत का इंतजार नहीं करती। सबसे पहले दिमाग किसी खास बात पर रीझता है, फिर हम फिजिकली, मेंटली या इमोशनली इसके आदि होने लगते हैं, यानी आदत हमारे रूटीन में शामिल होने लगती है। अंत में हमारा दिमाग ही यह बताता है कि इस आदत को कायम रखना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। दिक्कत तब पेश आती है जब हम में से कईयों को इसका अंदाजा तक नहीं होता कि दिमागी चाहत बढ़ाने वाली ये आदतें हम पर हावी हो रही हैं। मसलन, कोई आदमी एक जाम से शुरू होकर कुछ दिनों बाद शराब के समंदर में उतरने की चाहत भी पाल सकता है। चार्ल्स कहते हैं, आप एक बुरी आदत या लत को मिटा नहीं सकते, उसे बस बदल सकते हैं। बदलने का यह पैटर्न भी वही होगा जो बुरी आदत बनने का रहा है। चार्ल्स जोर देकर कहते हैं कि एक आदत रहे या हटे, इसके लिए मजबूत विल पावर की भी दरकार है। हालांकि द पावर ऑफ हैबिट लोगों की निजी आदतों का लेखा जोखा भर नहीं है। इस किताब की जिल्द में प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी नामचीन कंपनियों के विफल प्रोडक्ट का भी ब्यौरा है। लोगों की आदतों का अध्ययन कर कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स में तब्दीली की और कामयाब हुई। ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट पर ऐसी दिलचस्प रिपोर्ट्स किताब के सबसे रोचक चैप्टर्स में शामिल हैं। इन्हीं चैप्टर्स में बुरी हालत में फंसी अल्कोआ कंपनी का भी उदाहरण है, जिसके सीईओ ने कर्मचारियों की एक खास आदत बदलकर कंपनी को कामयाब और मुनाफेदार बना दिया।